ईरानी संस्कृति और कला।
प्रिय श्रोताओ, ईरानी संस्कृति और कला की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं
मरियम मेहर तहदी
और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
पिछले कार्यक्रम में हमने शहरों के भीतर ईरानी वास्तुकला और डिज़ाइनों की विविध विशेषताओं और व्यवस्था के बारे में बताया था। ईरान के प्राचीन शहरों की सड़कें, आयताकार मैदान और इसी प्रकार ईरान की ऐतिहासिक इमारतों के विदित रूप ईरानी वास्तुकला में मौजूद व्यवस्था और क्रम के नमूने हैं। इसके अलावा स्वदेशी मसालों का प्रयोग भी एक तरह से किया गया और इसने इमारतों की बाहरी व्यवस्था को सुंदर बनाने में बहुत अधिक मदद की है। इस कार्यक्रम में हम इमारतों और बिल्डिंगों के निर्माण में संतुलन के रूप में इस व्यवस्था के दूसरे आयाम पर चर्चा करेंगे।
ईरानी कला में चार पत्तियों या चार पर, चार फूल, चार किनारे, चार आयाम और चार बाग वाली डिज़ाइनों को विभिन्न चित्रों और डिज़ाइनों में विभिन्न रूपों में विस्तृत पैमाने पर देखा जा सकता है। चार दिशा में चार लाइनें या एक दूसरे को काटती हुई दो लाइनें ईरानी डिज़ाइनों के आधार को कला के सभी क्षेत्रों में प्रदर्शित करती हैं। हजारों साल पहले ईरानियों ने एक दूसरे को काटती हुई दो लाइनों को चमकते सूर्य का प्रतीक और उसके प्रकाश को दुनिया पर छाई व्यवस्था का चिन्ह बताते हुए इसको अपनी कलाकृतियों में प्रयोग किया। इस्लाम धर्म से पहले और इस्लाम के बाद की ऐतिहासिक धरोहरों, विशेषकर वास्तुकला में इमारतों की सजावट और उसको सुंदर बनाने में इस चीज़ को देखा जा सकता है।
एक चौकोर इमारत बनाने या एक चतुर्भुजीय इमारत पर एक गोल गुंबद का निर्माण करना ईरानी वास्तुकारों के निकट चतुर्भुजीय डिज़ाइनों के महत्व का पता चलता है। पुनर्जागरण काल में और 14वीं तथा 15वीं ईस्वी शताब्दी के काल में प्राचीन पश्चिमी वास्तुकला की विशेषता का अधिक नमूना है। इटली के वास्तुकार लियोन बैटिस्टा अल्बर्टी अपनी वास्तुकला की पुस्तक में लिखते हैं कि धार्मिक इमारत या तो गोल या गोलाई के रूप में होते थे, क्योंकि गोलाई सैद्धांतिक रूप में गणित का प्राकृतिक व पूर्ण स्वरूप है। फिर वो कहते हैं कि चर्चों को भी इसी प्रकार की उचित और समन्वित डिज़ाइनों से संपन्न होना चाहिए। अल्बर्टी की नज़र में केवल गोलाई के नक्शे से लाभ उठाते हुए ही इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अल्बर्टी द्वारा अपनी वास्तुकला की किताब में ये दृष्टिकोण बयान किए जाने के बाद बहुत से चर्च गोलाई में बने, जिनका यूरोपीय जनता ने भव्य स्वागत किया। अल्बर्टी का विचार पश्चिमी वास्तुकला में डिज़ाइनों और विचारों का पहला नमूना था जो गोलाई से लिए गए हैं। अलबत्ता उसके बाद लियोनार्डो डैनविंची ने चर्चों की डिज़ाइनिंग और उसके नक्शे में अष्टभुजीय या चतुर्भुजे डिज़ाइनों का भी प्रयोग किया, किंतु उन्होंने ओक्लिडस डिज़ाइन का भी प्रयोग किया, जबकि ईरानी वास्तुकार प्राचीन ईरानी विचारधाराओं से लाभ उठाते हुए प्राचीन काल से ही चतुर्भुजीय डिज़ाइनों पर काम करते थे। इसी प्रकार पश्चिमी वास्तुकला में बड़ी बड़ी इमारतों और आलिशान चर्चों को चतुर्भुजीय व अष्टभुजीय डिज़ाइनों के आधार पर बनाया गया है, जबकि ईरान में मस्जिदों, महलों, सामान्य घरों और दूर दराज क्षेत्रों में स्थित इमामजादों की मज़ारों सहित बहुत सी इमारतों में चतुर्भुजीय डिज़ाइनों में बनाया गया है। ईरानी विचारों के अब तक ये जारी रहने को विभिन्न इमारतों में देखा जा सकता है और इससे पता चलता है कि ये चीज़ ईरान की धरती की असल है।
वास्तुकला में निकटता का अर्थ यह है कि किसी इमारत या बिल्डिंग के दोनों ओर की डिजाइनें और केंद्रीय लाइन दूसरे ओर की तरह या समान हों। ईरानी वास्तुकला में चार ताकों के बारे में कहा जा रहा है कि उनमें निकटता होती है और हर चारों ओर से इमारत का स्वरूप एक जैसा ही होता है। ये निकट इमारत के संतुलन और व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। ईरानी वास्तुकला के बारे में शोध करने वालों का कहना है कि वास्तुकला में निकटता प्राकृतिक चीज़ों के लिए दिए गए आदर्श हैं और प्रकृति में फैली व्यवस्था और संतुलन के आधार पर ली गई है। इस विशेषता के कारण इमारतों की सुंदरता पर चार चांद लग गए हैं।
अधिकतर वास्तुकार और विशेषज्ञों ने ईरानी इमारतों में पाई जाने वाली निकटता का उल्लेख करते हुए उसे ईरानी कलाकारों के विचारों में बयान किए जाने को बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण बताया। निकटता से हटकर ईरानी वास्तुकला की अन्य विशेषताओं में संतुलन का भी स्थान है और हम इस विषय की ओर यहाँ पर संकेत करने जा रहे हैं। हो सकता है कि इस इमारत के विभिन्न भाग एक दूसरे से न मिलते हों, किंतु पहली नज़र में वो इमारत संतुलित व समन्वित नज़र आएगी। इमारत के संतुलन का ये स्पष्ट उदाहरण इस्फान के इमाम स्क्वायर या नक्श जहान में देखा जा सकता है। स्क्वायर में इसका एक भी छोर दूसरे छोर से तनिक भी नहीं मिलता और उसमें तनिक भी निकटता नहीं पाई जाती, किंतु उसकी वास्तुकला के तत्व इतने सुव्यवस्थित और एक दूसरे के साथ इतनी जटिलता से लगाए गए हैं कि स्वयं ही भीतरी व्यवस्था अस्तित्व में आ गई और दिखने वाले को एक समान नजर आता है।
इस्फहान के नक्शे जहान या इमाम खुमैनी स्क्वायर में चार असली इमारतें हैं। नक्शे जहान नामक चौराहे के पूर्वी कोने पर और अली कापू इमारत के सामने और इमाम खुमैनी मस्जिद के पास मस्जिद शेख लुत्फुल्ला स्थित है। ये मस्जिद दर्शकों के लिए अपनी सुंदरता का जलवा बिखेरती है। बहुत से लोगों का मानना है कि ये मस्जिद दूसरी मस्जिदों की भांति केवल एक मस्जिद की भूमिका नहीं निभा रही है। इस मस्जिद के वास्तुकार ने इस मस्जिद में इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न कर दिया है कि दूसरे धर्मों के अनुयायियों का भी ध्यान इस मस्जिद में ईश्वरीय प्रकाश और परिज्ञान की ओर जा सकता है।
जब मस्जिद शेख लुत्फुल्ला की ओर देखते हैं तो सबसे पहले जिस ओर ध्यान जाता है वो ये है कि गुंबद के साथ इस मस्जिद में मीनार नहीं है, जबकि दुनिया की जितनी भी प्रसिद्ध मस्जिदें हैं उन सब में मीनारें हैं और मीनार को मस्जिद का अभिन्न अंग समझा जाता है।
मस्जिद शेख लुत्फुल्ला जहाँ टाइलों के काम का अद्वितीय नमूना है, वहीं वास्तुकला का भी बेजोड़ उदाहरण है। इस मस्जिद का निर्माण उस समय किया गया था जब इस्फहान में चार बाग और बाग हजार जरीब का निर्माण आरंभ हुआ था। ये मस्जिद इस्फहान नगर के दक्षिण में और सफ़ा नामक पर्वत के आंचल में स्थित है। इस प्रकार ये मस्जिद चार बाग नामक रोड के अंत में है। याद रहे कि इस समय चार बाग नामक रोड का अस्तित्व नहीं है और जब सफवी काल की वास्तुकला अपने शिखर पर थी तब इस मस्जिद का निर्माण पूरा हुआ और उससे लाभ उठाया जाने लगा। कहा जाता है कि मस्जिद शेख लुत्फुल्लाह के निर्माण से पूर्व वहां पुराने ज़माने की एक मस्जिद का खंडर था, उसी पर इस मस्जिद का निर्माण किया गया है।
ऐतिहासिक दृष्टि से मस्जिद शेख लुत्फुल्लाह का निर्माण शेख लुत्फुल्ला मैसी की याद में किया गया है। शेख लुत्फुल्ला बिन अब्दुल करीम या शेख लुत्फुल्ला जबले आमिल शेख लुत्फुल्ला मैसी के नाम से मशहूर हैं। वे लेबनान के मैसूल जबल के एक विद्वान और धर्मशास्त्री थे। शाह अब्बास ने शेख लुत्फुल्ला के ज्ञान की चर्चा सुन रखी थी, इसलिए शिया धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसने उन्हें लेबनान से इस्फहान बुलाया। जब वो इस्फहान आकर रहने लगे तो शाह अब्बास ने इस्फहान में एक मस्जिद और मदरसे के निर्माण का आदेश दिया और जब मस्जिद का निर्माण पूरा हो गया तो शेख लुत्फुल्ला के धार्मिक शिक्षा देने से विशेष हो गई। इसी प्रकार शेख लुत्फुल्ला इस मस्जिद में नमाज जुमा भी पढ़ाने लगे।
स्क्वायर के महत्व और इसकी उपलब्धियों के दृष्टिगत इस्फहान के अधिकतर लोग इस स्क्वायर से गुजरते हैं। अलबत्ता ये विशेषता पहले भी नज़र आती है, क्योंकि मस्जिद और बाज़ार अब भी सार्वजनिक लोगों के प्रयोग में हैं। इसी के साथ नक्शे जहान इमारत को देखने के लिए बहुत से पर्यटक और सैलानी आते हैं। चूँकि घर में जीवन अपने हिसाब से जारी रहता है, घर की वास्तुकला भी मस्जिदों और धार्मिक स्कूलों की भांति ईरानी वास्तुकारों के क्रियाकलापों की अनुयायी होती है। विभिन्न क्षेत्रों में चार हाल वाला प्रांगण ईरान के प्राचीन घरों की विशेषता है। इन घरों में मुख्य प्रांगण, दरवाजे और दक्षिणी और उत्तरी छोर में कमरे बने हुए हैं। हाल छोटे और कम महत्व वाला या छोटा बनाया जाता था, जैसे शौचालय या स्टोर रूम जितना बड़ा चीज़ें पूर्वी और पश्चिमी छोर में पाए जाते हैं। अलबत्ता घर के विशेष महत्व के दृष्टिगत सामान्य रूप से प्रांगण का एक छोर अधिक महत्व हासिल कर लेता है और उस पर विशेष ध्यान दिया जाने लगता है। ईरानी घरों में इस छोटे से प्रांगण को घर आंगन के रूप में प्रयोग किया जाता है। घर आंगन मुख्य प्रांगण से मिला हुआ होता है या कभी कभी उससे जुड़ा हुआ है। ये भूमिका घरों के माहौल को विभाजित करने में ईरानियों के दृष्टिकोण को दर्शाती है। इस प्रकार से वो घर को भीतरी और बाहरी भाग में विभाजित कर देते हैं। इस विषय पर हम अगले कार्यक्रम में चर्चा करेंगे।